हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमित ने जैसे ही गुड्डी को अपने पास देखा, उसका दिल उसे पाने के लिए बेचैन हो उठा, क्योंकि डायन बनी गुड्डी ने अपने जिस्म पर नाम मात्र के कपड़े पहन रखे थे, जो अमित को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थे। लेकिन इससे पहले कि अमित उसका खूबसूरत जिस्म देखकर बहकता, उसे याद आ गया कि अगर उसने इस डायन की ओर एक कदम भी बढ़ाया तो ये डायन उसका फिर से बहुत बुरा हाल कर सकती थी। इसलिए वक्त रहते अमित ने खुद को रोक लिया और बड़े प्यार से उस डायन की ओर देखते हुए बोला, बेबी, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली मैं इस कमरे में थोड़ी देर आराम करने आया हूँ, क्योंकि मुझे वापस ऑफिस जाना होगा। मैं तो थोड़ा आराम करने के बाद तुम्हारे पास आना चाहता था। वैसे भी उस रात के बाद तुम्हारा साथ मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, और तुम जानती हो मैं तुमसे और तुम्हारे जिस्म से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता हूँ। जैसे ही अमित ने ये कहा, गुड्डी हल्का हल्का शर्माने लगी और शर्माते हुए अजीब सी नज़रों से अमित की ओर देखने लगी। अमित को लगा उसकी फिजूल की बातें काम कर रही हैं, इसलिए उसने आगे बोलना शुरू किया, और मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन अचानक मेरे ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है, मुझे वहाँ जाना होगा। अगर मैं नहीं गया तो तुम जानती हो ना मेरा कितना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अमित की बात सुनकर वो डायन उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी और बोली, ठीक है मेरे राजा, लेकिन तुम्हें जल्दी आना होगा। तुम्हें पता है ना, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता है। उसने ये बात बड़ी नाजुक आवाज में कही। उसकी आवाज सुनकर अमित का दिल कर रहा था कि वो उल्टी कर दे, लेकिन वो खुद पर कंट्रोल किए हुए था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने उस डायन के सामने उल्टी कर दी तो वो डायन उसका क्या हाल करेगी। वहीं दूसरी ओर विक्रांत रंधावा उस काले नाक को पत्थर का बनाकर उस जंगल में छोड़कर तारा परी के घर की ओर रवाना हो चुका था, क्योंकि वो पूरी रात तारा को देखता रहा था और अब सुबह हो गई थी। वो फिर से तारा को देखना चाहता था। उसने सोच लिया था कि अमन के आने से पहले वो तारा के साथ जिस्मानी रिश्ता बना लेगा और फिर हमेशा के लिए तारा को अपने साथ परीलोक ले जाएगा। अपनी माँ से विदा लेने के बाद विक्रांत रंधावा जल्दी ही अमन के बंगले की ओर रवाना हो चुका था। जैसे ही वो अमन के बंगले में गया, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि पूरी रात अनुष्ठान करने के बाद तारा परी सो रही होगी, इसलिए वो उसके कमरे की ओर चला गया। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने तारा परी के कमरे में देखा, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। ये देखकर विक्रांत को गुस्से के साथ साथ अजीब भी लगने लगा कि इतनी सुबह तारा कहाँ जा सकती है। फिर जल्दी ही उसने अमन के बंगले के हर कमरे और बाग में हर जगह देख चुका था, लेकिन ना तो करिश्मा जी और ना ही तारा का दूर दूर तक कोई नामोनिशान था। फिर विक्रांत रंधावा के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने एक नौकर से पूछा कि तारा और करिश्मा जी कहाँ हैं। उस नौकर ने कहा, साहब, हमें नहीं पता है, पर हाँ, बड़ी मालकिन और छोटी मालकिन दोनों ही सुबह सुबह कहीं चली गई हैं। जैसे ही विक्रांत रंधावा ने ये सुना, उसका गुस्से से बुरा हाल हो गया, लेकिन नौकर के सामने वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता था, इसलिए वो अपने कमरे में आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि अब तारा को वो प्यार से या फिर जबरदस्ती, लेकिन उसके साथ रिश्ता बनाकर ही रहेगा और फिर उसे अपने साथ ले जाएगा। अब वो ज्यादा दिन उसके बिना नहीं रह सकेगा। वहीं विक्रांत रंधावा के आने से पहले ही तारा परी और करिश्मा जी 800 किलोमीटर दूर शिव मंदिर के रास्ते की ओर रवाना हो चुकी थीं। तारा ने करिश्मा जी से कहा था, मॉम, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें आज ही वहां के लिए निकलना चाहिए। इसीलिए जल्दी ही तारा करिश्मा जी के साथ शिव मंदिर के लिए रवाना हो चुकी थी। विक्रांत रंधावा को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था। फिर कुछ सोचते हुए उसने वापस अपनी माँ के पास जाने का फैसला कर लिया। वहीं तारा और करिश्मा जंगल के रास्ते से होते हुए शिव मंदिर की ओर जाने लगी थीं। करिश्मा जी अच्छी तरह जानती थीं कि रास्ते में उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शिव मंदिर जाने का रास्ता काली पहाड़ियों से होकर ही गुजरता था। तारा परी और करिश्मा जी ने जंगल तक का सफर अपनी अपनी शक्तियों द्वारा तय किया था, लेकिन उससे आगे उन्हें पैदल ही जाना था, क्योंकि जंगल में किसी भी तरह की गाड़ी नहीं जाया करती थी। तारा परी चाहती तो एक पल में अपनी शक्ति से उड़कर करिश्मा जी को काली पहाड़ियों के पास ले जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि करिश्मा जी एक जिन हैं और जिन के पास भी अपनी शक्तियां होती हैं। अगर करिश्मा जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहती तो वो जल्दी ही काली पहाड़ियों तक पहुँच सकती थी। लेकिन करिश्मा जी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जंगल शुरू होते ही जिन्नातों की शक्तियाँ कम हो जाया करती थी और वहाँ उनकी कोई शक्ति काम नहीं किया करती थी। ये बात उन्होंने तारा परी को बता दी थी। उन्होंने कहा था, बेटा हम चाहें तो यहाँ से गायब होकर उड़कर भी जा सकते थे, लेकिन काली पहाड़ी वाले जंगल में जिन्नातों की कोई शक्ति काम नहीं किया करती है, इसलिए हमें पैदल चलकर ही ये सफर तय करना होगा। तारा परी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो करिश्मा जी के साथ जंगल की ओर चल पड़ी थी। वे दोनों काफी जल्दी जल्दी सफर तय कर रही थीं। करिश्मा जी ये देखकर हैरान भी थीं कि हालांकि तारा परी देव थी, लेकिन फिर भी उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो इतनी दूर चलने के बाद भी थकावट महसूस नहीं कर रही थी। अभी वे दोनों जंगल के रास्ते से जा ही रही थीं कि तभी अचानक वे एक बड़े पत्थर पर आराम करने के लिए बैठ गई थीं, क्योंकि करिश्मा जी को लग रहा था कि तारा को आराम की जरूरत है। हालांकि तारा ने आराम करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन जब करिश्मा जी आराम करने के लिए बैठ गईं तो वो मना भी नहीं कर पाई। जैसे ही वे वहां बैठे, कुछ ही सेकंड हुए थे कि उन्हें कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तारा परी और करिश्मा जी को वो आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तारा ने अपने आसपास अच्छी तरह से देख लिया था, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई दिखाई नहीं दिया था। करिश्मा जी ने भी अच्छी तरह से चेक कर लिया था, उन्हें भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बच्चे की आवाज काफी जोरों से आ रही थी। तारा उठी और अपने आसपास देखने लगी। तारा थोड़ा आगे बढ़ी तो झाड़ियों में से उसे वो आवाज और तेजी से सुनाई देने लगी। तारा ने एक नज़र करिश्मा जी की ओर देखा। तभी करिश्मा ने तारा को रोकते हुए कहा, बेटा ये एक मायावी जंगल है और यहाँ पर खतरा भी हो सकता है, तो तुम अपना ख्याल रखना। करिश्मा जी की बात सुनकर तारा ने कहा, लेकिन मॉम इस बच्चे की आवाज़ कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रही है, मुझे देखना चाहिए, कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है। ये सोचकर तारा उन झाड़ियों की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो झाड़ियों के करीब गई, उसने देखा कि सफ़ेद कपड़ों में लिपटा हुआ एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। उसे झाड़ियों की एक टहनी चुभ रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकल रहा था। उस बच्चे को इस तरह रोता और दर्द में देखकर तारा को बहुत बुरा लगा और जल्दी से उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। उसे बच्चे को गोद में उठाते ही तारा परी को कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। जैसे ही उसने बच्चे का नन्हा सा हाथ अपने हाथ में लिया, उसे बच्चे के पीछे की कहानी समझ में आ गई। उसे ज्यादा समय नहीं लगा था। बच्चे का हाथ पकड़ते ही वो समझ गई थी कि ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि काली शक्तियों के मालिक अमित का बच्चा है और इस बच्चे को यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मल्लिका लेकर आई थी।
उस बच्चे को गोद में लेने के बाद वो करिश्मा जी के पास ले आई। करिश्मा जी भी उस बच्चे को देखकर हैरान हो गईं, क्योंकि उस बच्चे के जिस्म से जो खून निकल रहा था वो ताज़ा खून तो एकदम लाल था, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर हुई वो खून एकदम से काला पड़ गया। तो करिश्मा जी को भी समझने में देर नहीं लगी कि ये बच्चा किसी काली शक्तियों का ही बच्चा है। तब करिश्मा जी ने तारा से कहा, बेटी मुझे इस बच्चे की जान लेनी होगी, तुम हट जाओ इसके पास से। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, तारा ने उन्हें रोक दिया और कहने लगी, ये आप क्या कह रही हैं मॉम, आप भला इस छोटे से मासूम बच्चे की जान कैसे ले सकती हैं। तब करिश्मा जी ने कहा, बेटी ये काली शक्तियों का बच्चा है, इसका खून इस बात का गवाह है, मुझे इसकी जान लेनी ही होगी। अगर मैं इसकी जान नहीं ली तो ये भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मेरी बात मानो बेटी, तुम इस बच्चे से दूर हो और उसे मुझे दे दो, मैं इसकी अभी जान ले लेती हूँ, ये हम सबके लिए ठीक रहेगा। तब तारा ने करिश्मा जी से कहा, नहीं नहीं मॉम, मैं आपको इस बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी, भले ही ये काली शक्तियों का बच्चा हो, लेकिन फिर भी ये एक बच्चा ही ना, और ये भला मासूम अभी क्या जानेगा, और जब ये खतरा बनेगा तब बनेगा, तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी आप इस बच्चे की जान नहीं लेंगी और न ही मैं अपनी आँखों के सामने इसकी जान जाते हुए देख सकती हूँ। तारा के हटने के आगे करिश्मा जी को पीछे हटना पड़ा, वरना वो उस बच्चे की उसी वक्त जान लेना चाहती थी। अभी वे दोनों आपस में बातें कर ही रही थीं कि तभी उस बच्चे की बूढ़ी दादी वहां आ गई। वो बूढ़ी दादी कोई और नहीं बल्कि काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ थी, जिसे मल्लिका से उस बच्चे को पालने की एवज में जिन महाराज के वंशज का खून मांगा था। और जैसे ही वो बूढ़ी दादी वहां आई, करिश्मा जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उस बूढ़ी दादी का गला जोरों से पकड़ लिया।